हरे कृष्ण। तो आप सभी का प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः पंकजनाभाय। नमः पंकजमालिने। नमः पंकजनेत्राय। नमस्ते पंकजांग्रे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। ऋषभाणो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये। कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंग्रयते गिरी। यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 37 और श्लोक मुझे दिया है 7 से लेकर 33 तक, क्योंकि इन बाकी श्लोकों में अनुवाद न होने के कारण इसे अलग पढ़ना है, परंतु समय के अभाव इतने सारे श्लोक, तो हम डायरेक्ट श्लोक पे आएंगे और उन सारे श्लोकों का सारांश कथा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हम 33 श्लोक पर जाते हैं। इसमें भी तात्पर्य नहीं है। चलिए। गृहापिधानम निर्विद्य गोपानी सार्य कृच्छत स्तूयमाना सुरेर गोपे प्रवीवेश स गोकुलम। गृहापिधानम निर्विद्य गोपानी सार्य कृच्छत स्तूयमाना सुरेर गोपे प्रवीवेश स गोकुलम। गृहापिधानम निर्विद्य गोपान्नी सार्य कृच्छत स्तूयमाना सुरेर गोपे प्रवीवेश स गोकुलम। गृहापिधानम निर्विद्य गोपान्नी सार्य कृच्छत स्तूयमाना सुरेर गोपे प्रवीवेश स गोकुलम। पढ़िए। माताजी शब्दार्थ गुहा गुफा के विधानम अवरोध को निर्भिद्य तोड़कर गोपान ग्वाल वालों को निसार्य बाहर निकालकर कृच्छतः भयानक जगह से सूयमाना प्रशंसित होकर सुरे देवताओं द्वारा गोपे तथा ग्वाल वालों द्वारा प्रविवेश प्रवेश किया स्व अपने गोकुलम ग्वाल ग्राम में। अनुवाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तत्पश्चात कृष्ण ने गुफा के दरवाजे को अवरुद्ध करने वाले शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया और बंदी बनाए गए ग्वालों को वे सुरक्षित स्थान पर ले गए। इसके बाद देवताओं तथा ग्वालों द्वारा उनका यशगान होने लगा और वे अपने ग्वाल ग्राम गोकुल लौट गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंतर्गत केशी तथा व्योम का सुरों का वध नामक 37वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनित सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञान दिविनांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पदीतानां पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभाणो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्या उपस्थित वरिष्ठ वैष्णव अमृत प्रभु और सभी आप भक्तगण वैष्णवगण सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। श्रीमद् भागवत अमल पुराण है और हमें प्रभुपाद जी ने इन सेवाओं में लगाया है कि हम हमारे नष्ट प्रायेश अभद्रेश। तो भागवत पर बोलना ये महानुभाव सिद्ध भक्तों का कर्तव्य होता है, लेकिन भागवत के ऊपर हम जैसे बद्ध बोलते हैं तो हमारे शुद्धिकरण के लिए होता है। तो मैं अपनी शुद्धिकरण की आशा से इस भागवतम के जो भी कुछ लिखा है प्रभुपाद जी ने उसे बोलने का प्रयास करूँगा, तो जो भी त्रुटि हो जाए तो हमें आप लोग वैष्णव दयालु होते क्षमा कर देंगे। हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग श्रीमद् भागवतम की लीलाओं में से केशी और व्योमासुर ऐसे दो असुरों का वध की ये कथा है। भगवान इस धरती पर अपने वचन के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता में यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजान्म परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। भगवान अपने धाम में बैठकर भी केवल इच्छा मात्र से इनका वध कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक के हृदय में भी परमात्मा रूप में भगवान है, तो वहीं से भी उनका लाइट ऑफ कर सकते हैं, है ना, हार्ट अटैक करके। परंतु भगवान अपनी लीलाओं से अपने भक्तों को आश्वासन देने के लिए आते हैं जो भक्त पूर्ण तरह से उनके ऊपर शरणागत होते हैं। तो ऐसे भक्तों को आनंद देने और उन्हें विश्वास दिलाने कि हर परिस्थिति में मैं आपके साथ हूं, है ना। तो भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं, भक्त रक्षक कहलाते हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि नारद मुनि ने श्लोक क्रमांक 15 से 20 तक भगवान के गुणों का वर्णन किया है और 10 से 23 तक नारद उच्चारण करते हैं। तो इस कथा प्रारंभ होती केशी वध से है। तो भगवान को मारने के लिए कंस अनेकानेक असुरों को भेजा करता था और इस बार तो उसने बहुत शक्तिशाली असुर को भेजा, वो था केशी, घोड़े का रूप धारण करना। वो असुर बहुत सारे रूप धारण कर सकता था, क्यों, मैदानों का पुत्र था और मैदानों जानते कि एक मायावी रचना करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है मैदानों। तो मैदानों के पुत्र होने के कारण ये केशी अनेकानेक रूप धारण, लेकिन उसका पसंदीदा रूप था घोड़े का, केशी घोड़ा। तो वो घोड़ा इतना विशाल था कि वो आकाश को छूता था और जब चलता था धरती पर जैसे भूकंप आया हो इस तरह से उसका चलना था, दौड़ना था, और उसके सामने कोई भी असुर कोई भी दुश्मन टिकता नहीं था। इसलिए कंस ने सोचा कि इस शक्तिशाली असुर को भेजकर मैं मेरे वध करने वाले या मेरा जिनसे हत्या होने वाली है इस कृष्ण को मारने के लिए मैं केशी को भेजता हूं। तो आज तक जितने भी असुर भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजे वापस उसमें से कोई नहीं आया, हर समय उसे हार का सामना करना पड़ा, तभी वो भेजता था। तो केशी जब दौड़ के, और केशी को बताया गया था कि जिसके सर पर मोर मुकुट है, बंसी हाथ में है, पीताम्बर धारण करने है, वही कृष्ण है। तो इस कथा के प्रसंग में एक छोटा सा लोकल प्रसंग आता है कि मधुमंगल और सारे ग्वाल बाल ये खेल रहे थे और तब मधुमंगल कहते हैं, हे सखा, तुम यदि अपनी बंसी अपना मोर मुकुट और पीताम्बर मुझे दे दोगे तो सारे ग्वाल बाल गोपियां मेरे तरफ आकर्षित होंगे और मुझे गुणगान करेंगे और मुझे लड्डू खिलाएंगे, क्योंकि मधुमंगल को लड्डू अधिक पसंद है। तो कृष्ण ने हंसे और हंसते हंसते सब दे दिया। और देने के बाद फिर केशी आया और केशी को कंस ने बताया था कि जिसके सर पर मोर मुकुट वंशी और पीताम्बर है उसे मारना। तो मधुमंगल बड़ा थाट बाट में चल रहा था कि कृष्ण के अलंकारों को लेकर। तो तब तक केशी आया और केशी ने देखा कि ये कृष्ण है, तो उसने जोर से अपनी दुलत्ती फटकाई, लगता है लेकिन कृष्ण साइड में थे तो उन्होंने उनकी दुलत्ती पकड़ ली। तो उस दुलत्ती तो लगी नहीं मधुमंगल को, लेकिन दुलत्ती की जो हवा इतनी तेज थी कि उसी से मधुमंगल मूर्छित पड़ गया। और जब भगवान ने केशी को वध किया, दोनों टांगों को उठाया पिछली और घुमाकर 400 हाथ यो दूर फेंक दिया और अचेत हो गया। फिर जैसे ही केशी को चेतना आई, फिर और तीव्र गति से भगवान के ऊपर आक्रमण किया। और इस बार उसने थोड़ा मुंह फाड़ा था और जैसे दौड़ रहा था, भगवान ने क्या किया, अपना एक हाथ उसके मुंह में डाल दिया और जैसे मुंह में डाल दिया पूरा ऊपर उठा लिया भगवान ने। और उठा दे तो उसके मुंह में जो हाथ गया था भगवान, रॉड जैसे गर्म भट्टी में रॉड डालते ना, उसी तरह वो तपने लगा और उस गर्माहट के कारण उसका देहांत हो गया और वो केशी असुर वहीं पर मूर्छित होके गिर पड़ा। तो मधुमंगल सका, ये आपका सामान आप संभालो, एक ही क्योंकि हवा लगी उसने में ही मधुमंगल का जान निकल गया है। तो तब बोलता है, इसलिए भगवान को इंटीमेट नहीं करना चाहिए, भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए, है ना। कृष्ण ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण ने जो किया केवल श्रवण करो, और राम ने जो किया है उसका अनुकरण कर सकते, उसी के पद चिन्हों पर चल सकते, लेकिन कृष्ण का अनुकरण नहीं करते। कृष्ण ने जो बोला है बस उसको सुनो, उसको फॉलो करो, वह है भगवत गीता। इस प्रकार केशी का वध होता है। और केशी जो असुर है, ये भागवतम में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि जितने भी असुर है वो हमारे हृदय में भी है और उस अनर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो केशी असुर है वो एक महान भक्त और गुरु, मैं और गुरु हूं इसका प्रतिनिधित्व है। दंभ कि मैं बड़ा भक्त हूं, मैं गुरु हूं, जो इस भावना में चलता है कि मैं बड़ा गुरु हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, ये केशी असुर का प्रतिनिधित्व करते। तो ये केशी असुर हमारे हृदय में भी है। कभी कभी हम थोड़ा सा भक्ति में कुछ ज्यादा कर लेते हैं, अच्छे प्रवचन दे देते हैं, बहुत ज्यादा प्रचार योगों को कर लेते हैं, या बहुत अधिक धन हम एकत्रित करके लेके आते हैं, या अधिक बुगड़ी सेशन कर देते हैं, तो हमें फील होने लगता है कि मैं कुछ ग्रेट हूं, है ना, ऐसा फीलिंग हमें आता है। तो यही वो चीज है। तो यह है, वास्तव में हमारे द्वारा जो भी कुछ भक्ति में कार्य हो रहा है वो केवल कृपा के कारण हो रहा है। हम अपने आप को भक्ति के आने से पूर्व जानते हैं कि हम क्या थे, है ना, हमारी स्थिति क्या थी और भक्ति के आने में यह स्थिति क्यों है। आज जो हम इतना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई मंदिर बनवा रहा है, जैसे हम थाने में छोटा सा एक मंदिर बनवा रहे हैं, तो कभी कभी लगता है कि कितना मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। जैसे यशोदा मैया उदाहरण है दामोदर लीला का, कितनी रस्सियां लाई, बांधने का प्रयास किया, उसके प्रयास से बांधे नहीं गए भगवान, बांधे गए दूसरी उंगली, जब तक नहीं आई पहली उंगली चलती रही, बांधो रस्सी बांधती गई, बांधती बांधती थक गई, पसीने से लथपथ हो गई। जब भगवान ने देखा कि मैया प्रयास दिल लगाकर 100% कर रही है, तो भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं और हमारा प्रयास यदि उसके पीछे की भावना सही है तो उस प्रयास को प्रतिसाद भगवान देते हैं, और भावना गलत है तो फिर प्रतिसाद नहीं मिलता है। तो भगवान ने देखा कि मैया का प्रसाद 100% है और बांधने का ही है, तो मतलब भगवान की कृपा आवश्यक है। बिना भगवान के कृपा के कोई भी भक्ति में किसी भी कार्य में सफल नहीं होता है। गुरु और कृष्ण ये दो की कृपा जरूरी है, क्योंकि भगवान हमारे सामने साक्षात उपस्थित नहीं है, लेकिन भगवान अपने प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होकर हमारे ऊपर कृपा करते। तो इस प्रकार का केशी का असुर हमारे अंदर है, तो हमें भगवान से ये प्रार्थना करें कि जिस प्रकार केशी असुर को आपने वध किया, उसी प्रकार हमारे अंदर के कि मैं बड़ा भक्त हूं, मैं बड़ा गुरु हूं, इस दंभ की भावना को चूर कर दे, मिटा दे, ताकि हम शुद्ध भक्ति आपकी कर सके। तो एक केशी असुर, तो नारद मुनि का एक संवाद, इस केशी असुर का जैसे वध किया जाता है, तुरंत भगवान के पास नारद मुनि आते हैं। और नारद मुनि 15 से लेकर उस श्लोकों में 15 से 21 भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। और 15 से 21 में भगवान पूर्व नियोजित होने वाली लीलाओं को भगवान के सामने दोहराते हैं कि प्रभु आप जल्दी से वध किए, क्योंकि अभय वृंदावन की लीला खत्म होने वाली है। इन असुरों के वध के पश्चात वृंदावन की लीला समाप्त होती है और फिर इसका अगला चैप्टर देखिए, अक्रूर का आगमन है। तो व्योमासुर तक भगवान ने वृंदावन में असुरों को मारा और उसके पश्चात भगवान अभी मथुरा लीला करने वाले। तो भगवान को नारद मुनि याद दिला रहे, भगवान को सब पता है, लेकिन नारद मुनि की उत्सुकता थी भगवान की वो लीला, मथुरा की लीला और द्वारका की लीलाओं को देखने। इसलिए नारद मुनि कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान विभो, दो ही दिनों में मैं आपके हाथों, समय भी बता रहे हैं। तो भगवान जो करते वो लीला होती है, और लीला किसी कर्म बंधन में नहीं होती है, हमारे कार्य कर्म बंधन में आते हैं, कर्म है, लेकिन भगवान की लीला पूर्व नियोजित होती है, सब कुछ प्लानिंग होता है ना। जैसे भगवान के पास श्वेतद्वीप में गए थे गाय, पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके सभी देवताओं के साथ, तो भगवान ने कहा कि मुझे पता है आप लोग जाइए, मैं अवतार लेने ही वाला हूं, और सारे देवताओं को भी आदेश दिया आप भी ब्रजमंडल में अवतार लीजिए। तो मतलब सारा प्लानिंग के साथ पहले से ही निर्धारित होता है, और इस संसार को भी भगवान ने प्लानिंग के साथ ही बनाया है। हमें लगता है ये अचानक कैसे हो रहा है, नहीं, भागवतम में आप देखते हैं कि पूर्व कल्प में होने वाले सप्त ऋषि कौन है, क्या क्या होने वाला है, वो सब भागवतम में लिखा हुआ है। तब तब ये सूरा सृष्टि प्लानिंग के साथ चलता है। हमें लगता है कि हमारे वजह से हो रहा है, हम करता, मैं कर रहा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। तो ऐसे कितने पूरी दुनिया में लोग 99% भ्रमित है और भ्रम में है कि हमारे द्वारा हो रहा है, सब अपने आप को करता मान रहे, लेकिन सारा नियोजित है, जिस प्रकार भगवान की सारी लीला। तो इसलिए नारद मुनि याद दिला रहे, दो ही दिनों में आपके हाथों चानू और मुष्टिक और अन्य पहलवानों के साथ साथ कुवलपीड तथा राजा कंस का भी मृत्यु होते देखूंगा। इसके बाद में कालयवन मूर नरक तथा शंक असुर को भी आपके द्वारा मारा जाते देखूंगा। मैं आपको पारिजात पुष्प चुराते हुए और इंद्र को पारिजात कर पराजित करते देखूंगा। तत्पश्चात अपने पराक्रम से मूल्य चुकाते हुए वीर राजाओं को, राजाओं की कन्याओं के साथ आपका विवाह करते देखूंगा। तब है ब्रह्मांडपति, आप द्वारका में राजा नरक का श्राप से उद्धार करेंगे और एक अन्य पत्नी के साथ साथ आप अपने लिए समंतक मणि भी लेंगे। आप ब्राह्मण के मृत पुत्र को अपने दास यमराज के धाम से वापस लाएंगे। उसके बाद आप पौंड्रक का वध करेंगे तथा काशी नगरी को जला देंगे और राजस्व यज्ञ के समय दंत वक्र तथा चेदीराज का संहार करेंगे। मैं इन सब वीरतापूर्ण लीलाओं को देखूंगा ही, साथ साथ ही द्वारका में अपने वास काल में आपने जो अनेक लीलाएं करेंगे उन्हें भी देखूंगा। ये सारी लीलाएं दिव्य कवियों के गीतों में इस धरा पर गाई जाती है। तो सारा द्वारका लीला और मथुरा लीला में क्या क्या करने वाले नारद मुनि भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे। तो भगवान किसी कार्य काल में बनते नहीं है, है ना। एक प्रसंग आता रामायण में, भगवान के सामने काल स्वयं उपस्थित हुआ था जब भगवान का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, है ना। रामायण में हम देखते हैं कि जब भगवान का कार्यकाल 10,000 साल का था, क्योंकि त्रेता में लोग 10,000 साल जीते हैं, तो 10,000 साल जब समाप्त हो गए तो काल स्वयं प्रकट हुआ। तब उनके साथ लक्ष्मण जी भी थे, उनको बाहर भेज दिया। और काल जब आया तो कहने लगा कि आपका जाने का प्रस्थान सम हो गया है। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं और 1,000 साल रहना चाहता हूं। तो भगवान रामचंद्र कितने 11,000 साल तक धरती पर रहे, 1,000 उन्हें एक्सटेंड कर लिया। तो मतलब जो भी इस संसार में कर्म बंधन या नियम नीति नियम काल है, ये भगवान को बाधित नहीं करता। भगवान कालोस्मी, स्वयं काल है, कालों को भी काल है। तो उसी प्रकार यहां पर भी नारद मुनि पूर्वनियोजित होने वाली घटनाओं को भगवान के सामने प्रस्तुत करें कि जल्दी से जल्दी आप, और नारद मुनि के कार्य है भगवान की लीलाओं में सपोर्टिंग वर्ब, है ना। तो हम देखते हैं कि भगवान अवतरण लेने के लिए नारद मुनि ने कंस को जल्दी भगवान अवतार ले, इसके लिए नारद मुनि ने कंस को क्या बोलते हैं मराठी, चिंगारी लगाई, है ना। नारद कंस ने देखा कि वसुदेव सत्यवादी है, पहला पुत्र लेके आया और उन्होंने क्या किया, पहला पुत्र वापस लौटा क्योंकि उनको पता था कि आठवां पुत्र मारने वाला है, तो पहले पुत्र की हत्या क्या करूं। तो जैसे नारद मुनि ने देखा कि कंस पहला पुत्र लौटा दिया तो फिर दूसरा पुत्र जन्म, तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र, ऐसे सात पुत्र जन्म लेने के लिए तो कई साल लग जाएंगे, क्योंकि एक साल में तो एक ही बच्चा होता है ना, जानवरों को एक साल में दो बार होता है लेकिन इंसानों को एक साल में एक ही बार, तो अभी सात बच्चे भी गिने तो सात साल लग जाएंगे, और जो असुर है उनकी शक्ति और उत्पात तो और मचाएंगे। इसलिए नारद मुनि के क्या प्लानिंग चेंज कर दिया, कंस का जो प्लानिंग है उसको घुमा दिया, आ गए और कंस को बोले, अरे वो विष्णु है ना बहुत छलिया है, तुमको मालूम नहीं, वो एक पहला भी ले सकता है आठवां भी ले सकता है। तो उन्होंने बाजू में कमल था फूल, तो कमल फूल उठाया, बताया देखो आठों पंखड़िया, इसमें से पहली कौन सी और आठवीं कौन सी है, ये भी पहली हो सकती है, ये भी पहली हो सकती है, और कौन सा आठवीं है। तो घुमा दिया ना कंस को दिमाग, और फिर कंस कंस क्योंकि देवर्षि नारद मुनि तो सभी मानते क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं है, असुर लोग भी उनको प्रणाम करते हैं, असुर लोग भी उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि साधु मतलब क्या, अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा, साधु का पहला ही लक्षण वो अजात शत्रु होता है। यदि साधु बनकर उसका शत्रु बना रहे तो मतलब वो साधु नहीं है, तो साधु वही है जिसका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ ज्ञान जानता है ना, वो जानता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है, तो वो आत्मा की ओर देखता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है कवि अस्थिनी शनिचे व शपाके च पंडिता समदर्शिना, वही व्यक्ति पंडित है, वही व्यक्ति साधु है जो सब में आत्मा रूप में सबको देखता है। तो नारद मुनि सभी को आत्मा रूप में देखते हैं, इसलिए कंस को उन्होंने बताया, और जो कंस देखता है कि हाँ, तो तुरंत खुद उठकर गया और देवकी का जो पहला पुत्र था उसे मार दिया, और फिर उनको फिर कारागृह में डाल दिया, और फिर जैसे बच्चा पैदा होता है एक एक करके छे के छे मार दे, लेकिन सातवां जो था वो तो ट्रांसफर हो गए बलराम जी है? तो कंस सोचने लगा, अरे देवता लोग भी मेरे से भयभीत होते कि गर्भपात हो गया, तो ऐसा कंस सोच रहा था, लेकिन भगवान की प्लानिंग थी कि बलराम जी को अवतरण करके पहले जो छह पुत्र थे है ना, उसके बाद सातवें पुत्र के रूप में बलराम जी आकर वो भगवान की लीला में पाठ निभाते। तो इस प्रकार नारद जी यहां पर भगवान का लीलाओं का जल्दी जल्दी असुरों को मारकर नेक्स्ट लीला हमें देखने मिले, इसी उत्सुकता से साथ भगवान को प्रेरित कर रहे। तो दूसरा जो असुर है इस कथा में वो है व्योमासुर। तो ये व्योमासुर जो है चमदागढ़ का रूप बनाकर आया था, है ना। तो व्योमासुर बाद में ये केशी असुर का वध करने के बाद भगवान कंधराव की ओर जाते हैं, गुफा पर्वत की ओर, तो वहां पर इसकी इसका रूप धारण करते भगवान चरवाहों का और गढ़रिया है, इनका रूप धारण करके एक वहां पर खेल खेलते हैं। तो उनमें ये जो चमदागढ़ के रूप में व्योमासुर आता है और एक एक बालक को वो खेल रहे थे, तो उसमें से बहुत सारे ग्वाल बालों को उठा उठा कर गुफा में बंद कर रहा था, गुफा में डाल दिया, और पांच छह ही ग्वाल बाल बचे, तब तक भगवान तो समझ गए, लेकिन जैसे जो पांच छह बचे थे उनको उठाने के लिए गया तब तक भगवान ने उसका गला ही पकड़ लिया, है ना, और बहुत प्रयास किया उसने छोड़ने का, भगवान ने उसको उठाकर सीधा पटक दिया, और जब पटक दिया तो वही उसका मूर्छित हो गया। फिर भगवान ने जितने भी ग्वाल बाल, उसने क्या किया, बंद डाल तो दिया अंदर, बाहर से एक बड़ा पत्थर शिला, अभी लास्ट श्लोक में बोला शिला लगाकर बंद कर दिया, और फिर भगवान ने जब इसका वध करने के बाद अपने एक लात के प्रहार से उस शिला खंडों को चूर करके सारे बाल बालों को पुनः वापस लिया, और फिर ये लोग गोकुल लौट गए। तो इस प्रकार ये दो कथाएं इस एक अध्याय में आती हैं, व्योमासुर और व्योमासुर जो है वो हमारे अनंदर के अनर्थों का प्रतिनिधित्व करता है, वो है चोर धूर्तो तथा ऐसे लोगों का संग करना जो स्वयं को अवतार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भीमासुर इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आज संसार में देखते हैं कितने सारे लोग भगवान बने हुए हैं, अम्मा भगवान, साउथ इंडिया में बहुत सारे भगवान हैं, है ना, अम्मा भगवान, ये भगवान, वो भगवान, है ना। आजकल हीरो लोगों को भी भगवान बना रहे हैं, खिलाड़ी लोगों को भी भगवान है, उनके मंदिर बनवाए जा रहे हैं, उनके पुतले निर्माण किए जा रहे हैं, हाँ, वही पूजा होती है। तब तक कलयुग में ऐसे धूर्त लोग हैं जो भीमासुर की तरह रूप बदल कर आकर अपने आप को प्रेजेंट करते। तो चोरों धूर्तों से भरी ये दुनिया है और स्वयं भगवान भर के, स्वामी बन के, भगवान के नाम पर खुद भोग कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान एक कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए जेल में, बाद में बाहर आकर उन्होंने अपनी भगवत्ता दिखाई। और ये जो कलयुग में भगवान बन रहे हैं, ये प्रकट होते बाहर, लेकिन जब इनकी भगवत्ता उतर जाती है तब जाते अंदर जेल में, है ना। जब इनका भंडा फोड़ होता है तो जेल में जाते, उल्टा है। तो कृष्ण जेल में प्रकट होके बाहर आए और ये लोग बाहर प्रकट होके भगवान बनने का प्रयास किए तो अंदर गए। इसलिए भगवान कोई बनता नहीं है, भगवान कोई बनने की चीज नहीं है कि प्रोपल है ना, वेट लिफ्टिंग करके या योग क्रिया के द्वारा या तपस्या करके कोई भगवान बने। भगवान साक्षात होते हैं, भगवान बनने की चीज नहीं है। जैसे हम कोई इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, है ना, ऐसे भगवान बना नहीं जाता, भगवान स्वयं है और भगवान एक ही है। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जब केशी असुर को मारा तो भगवान के नाम उस समय एक नाम पड़ा, केशव। केशव नाम भगवान को उस समय दिया गया, जैसे गोविंद कुंड पर गोविंद अभिषेक करने के बाद सुरभि और स्वर्ग के द्वारा गोविंद नाम मिला, तो यहां भगवान को केशी नाम मिला। तो भगवान कृष्ण का ओरिजिनल नाम एक ही है, कृष्ण, और जितने भी उनके नाम है वो सब उनकी लीलाओं के आधार पर उनको दिए गए। तो इस प्रकार इस अध्याय में नारद मुनि का भगवान के गुणों का वर्णन, बहुत सुंदर, बहुत सारे गुणों का वर्णन किया है, उसमें से हम कुछ गुण यहाँ पर है। तो नारद मुनि जब केशी वध करने के पश्चात उनके गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान को कहते हैं योगेश्वर, ब्रह्मांड के स्वामी, शरणागत वत्सल, यादव श्रेष्ठ, परमात्मा, सर्वनियंता, सर्वज्ञ, सृजन पालन संहार करने वाले, सृष्टा, इच्छाओं को पूरा करने वाले और भक्तों के रक्षक। ऐसे गुणों का नारद मुनि वर्णन करते हैं। तो भगवान सच में भक्तों के रक्षक है, ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त होंगे तभी रक्षा करते हैं, नहीं, जब भी उनके शरण में आ गया, जैसे रामचंद्र भगवान बोले ना कि जो कोई भी मेरे चरण में आकर एक बार कहता कि मैं आपका हूं, उसकी रक्षा का भार मैं उठाता हूं। तो हम सब भक्तों को अनुभव आता है, क्योंकि जब तक भक्ति में अनुभव नहीं आता है ना, तो भक्ति करना भी अच्छा नहीं लगता और भक्ति में टिके भी रह नहीं सकते। तो सबको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन जरूर आता है, हमें भगवान हमारी रक्षा करते हैं। अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि सामने प्रकट होकर हमको हाथ पकड़ कर रक्षा करते, नहीं, अलग अलग रूपों में आके रक्षा करते। मुझे वो प्रसंग आता है जगन्नाथ, दो तीन बार हुआ मेरे साथ कि भगवान कैसे रक्षा करते। तो जगन्नाथपुरी हम गए थे फर्स्ट टाइम, 2008 की घटना है। तो यहाँ रक्षक की बात आई इसलिए मैं, भगवान हमेशा भक्तों के रक्षक करते। तो 2008 में यहाँ पर एक जगन्नाथ जी का फोटो लगा है। मैं चार सालों से, 2004 से जब से आया हूँ, पहले जगन्नाथ कौन मालूम नहीं थे, और जब देखा तो लगा ये कौन सा अचित्र विचित्र रूप है, ये कौन सा अवतार है भगवान का। तो जब उनके बारे में सुनी कथा, रथ यात्रा मनाई और रथ यात्रा बहुत अच्छा लगा, जुहू का फर्स्ट टाइम रथ यात्रा देखा, तो इतना अच्छा फेस्टिवल है। फिर जगन्नाथ के बारे में जानने की उत्सुकता हुई, तो उनका ये बार बार परिक्रमा करते फोटो देखता था। तो मैंने कहा इसके ओरिजिनल रथ यात्रा कहाँ होती है, जगन्नाथपुरी में। तो मैं वहाँ प्रार्थना करता कि अभी हमको भी मौका दीजिए जगन्नाथपुरी जाने का। तो चार साल के बाद मैं कैंपस पिचिंग में गोपेश्वर प्रभु के साथ, उन्होंने मुझे कैंपस में सेवा दी थी, बुलाया था रेवतीरमंतु मेरा नाम। तो कैंपस में सेवा करता, तो बहुत सारे लोगों को हम यहाँ बैठकर प्रीचिंग करते हैं। 4 बजे मंदिर खुलने से पहले, 4 से 4:15 के बीच में ये कैंपस का ही पहला प्रीचिंग शुरू हुआ। तो ये प्रभु जी की आइडिया है, हमारे गोपेश्वर प्रभु की। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग आते हैं, शांति से बैठने से बेटर है, इधर बात करने से बेटर हम उसको कुछ सुनाए। तो हम उनको सुनाते थे भगवान का बारे में, प्रभुपाद के इस्कॉन के बारे में, भगवद गीता के बारे में छोटी स्टोरी बताकर। तो एक भक्त बैठा था मुझे, और वो आके बोलता है, प्रभु जी इतना अच्छा अच्छी बात है, हमको क्यों नहीं बताया, मैं 6 महीने से लाइफ मेंबर हूं और मुझे कुछ नहीं बताया जाता है, हमें कुछ नहीं बता रहे। तो उसके टोनिंग से मैं समझ गया ये मराठी है। तो मैंने बोला आप मराठी हो गया? बोले हाँ। तो ठीक है, मैं भी मराठी हूँ। तो थोड़ा बैठ कर उनको समझाया, तो फिर वो रोज आने लगा, जुहू गली में ही रहता था ये रोड नंबर 5 या 6 पर। तो रोज आने लगा गौर आरती में, ऐसा कंटिन्यू 3-4 महीना 6 महीना आया। फिर वो एक बार शाम को गौर आरती करके मेरे ऑफिस में आया, और उन्होंने मुझे मेरे ऑफिस में कोई मुझे जगन्नाथ का प्रसाद ख्वाजा दे के गया था, और वो पूछता है क्या है प्रभु जी, बहुत क्यूरियोसिटी पर्सन था, अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया है अभी 2-4 महीने पहले। तो उन्होंने कहा ये क्या है, बोलते जगन्नाथ का प्रसाद है ख्वाजा। बोले जगन्नाथ कौन है? फिर उसको जगन्नाथ की स्टोरी बताई, फिर रथ यात्रा की भी स्टोरी बताई। तो फिर वो तुरंत बोलता है, बोले हम चलेंगे रथ यात्रा, मैं 4 साल से प्रे कर रहा था, तो वो बोला चलेंगे रथ यात्रा। तो मैंने बोला, क्योंकि वो हम बात कर रहे थे 26 जून को, और रथ यात्रा थी 4 जुलाई को, मतलब 8 दिन के बाद। तो बोले चलिए हम चलते हैं। तो मैंने तो अभी तो टिकट मिलेगा नहीं, और बहुत रश होता है, इतना 36 घंटे का जर्नी जनरल में तो मैं नहीं करूँगा। तो बोले कोई चिंता नहीं, मैं आपका व्यवस्था करता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कैसे व्यवस्था करें? बोले हम ऊपर से जाएंगे। पहली बार मेरा मतलब भगवान देखिए कैसा भक्तों की इच्छा पूरी करते और रक्षा करते, रक्षा की बात अभी आगे। तो मैं सोचा भी नहीं था कभी जिंदगी में, एसी फर्स्ट क्लास में भी नहीं बैठा, थर्ड एसी भी नहीं बैठा, मैं वो फ्लाइट से जा रहा हूँ। तो मैं बड़ा खुश हो गया। मतलब फिर उसने क्या किया, मायापुर का भी टिकट निकाला 2-टायर AC का। तो फिर हम 4 जुलाई की सुबह ही 9 बजे ट्रेन फ्लाइट पकड़ी, उसी दिन रथ यात्रा जिस दिन थी, 2 घंटे के अंदर पहुंच गए भुवनेश्वर। और वहां से उसने गाड़ी करके फिर हम साक्षी गोपाल ये सब देखते हुए 2:30 बजे पहुंचे, और हम थे गुंडीचा मंदिर पहुंचे। और इतनी भीड़ देखकर वो डर गया, प्रभु जी जगन्नाथ तो वहां से दिखते नहीं गुंडीचा मंदिर से, क्योंकि रास्ता ऐसा थोड़ा टेढ़ा है ना, राउंड है। तो 1.5 किलोमीटर का फासला है वो। तो इतनी भीड़ अफाट, मैंने भी जिंदगी में इतनी पहली बार भीड़ देखी, तो इतना भीड़ होता है यहाँ, लाखों लाखों भक्त। तो बोले अभी हम जगन्नाथ के पास कैसे जाएंगे? तो मैंने उसको बोला कि बम्बई से जगन्नाथपुरी 2 घंटे में ला सकता है, तो यहाँ से वहां वो भी ले जाएगा, है ना। तो फिर हम भीड़ को काटते काटते काटते, पहले तो होटल ले लिया, बहुत दूर मिला, वहां से भी टीवी पे देखा तो अभी तक रथ यात्रा चालू नहीं हुई थी, 3:30 बज गया था। और फिर आए हम रथ यात्रा के पास, बहुत भीड़ को चीरते हुए आए, और चारों तरफ से बैरल लगे हुए थे, पुलिस मिलिट्री होमगार्ड, ऐसे 4 बैरल थे। तो मैं तो साधु ड्रेस में था, लाल कपड़े में, वो था नॉर्मल शर्ट पैंट में। तो मैंने तो देखो भाई मैं साधु हूँ तो थोड़ा सा बात करके मैं चला जाऊंगा, अभी आप तुम देख लो, मैंने वहां थोड़ा स्वार्थ दिखा दिया। तो बोले ठीक है प्रभु जी आप जाइए, मैं भी आता हूँ आपके पीछे। तो मैंने एक मिलिट्री वाले को पूछा, मतलब पहली बार रथ यात्रा जगन्नाथ का दर्शन, जाने दो मतलब। तो पता नहीं भगवान की कृपा थी, नहीं तो ऐसे किसी को घुसने देते नहीं जल्दी। तो हम चले गए बलराम जी के रथ के पास पहुंच गए, और पहली रथ यात्रा में भगवान की कृपा से 3 रथ खींचने को मिले, 3रा रथ जो हमने। फिर दूसरे दिन की घटना, भगवान ने कैसा हमारा रक्षा किया। तो उसने 2-टायर AC का टिकट निकाला था, और वो ट्रेन थी, टिकट में लिखा था 10 बजे थी रात को। तो हम दूसरे दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर थोड़ा जो बचा गए, और टोटा गोपीनाथ इनका दर्शन करके जैसे वापस आ रहे थे, तब मेरे हृदय में एक आवाज जैसे आई कि टिकट में कुछ गड़बड़ है। मैंने उसको पूछा भाई टिकट बराबर है टाइम पे? बोले हाँ। तो मुझे आवाज ऐसी आ रही कि टिकट में कुछ गड़बड़ है। फिर वहां से फिर जगन्नाथ मंदिर में 5 बजे पहुंचे, वहां पर और थोड़ा प्रसाद लिया, जैसे खाया तो दूसरा आवाज आया टिकट में कुछ गड़बड़ है। तो मैं सोचने लगा क्या ऐसा क्यों बने। तो फिर मैंने उसको बताया, मतलब भाई टिकट बराबर चलो, मतलब क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान भी हमको इंटेंशन दे रहे। तो फिर हम बोले चलिए, हम कहाँ गए, गुंडीचा मंदिर के पीछे इंद्रदुम्न सरोवर में गए, वहां 6:15 डुबकी लगाई, और पहली डुबकी लगाते फिर आवाज आया टिकट में कुछ गड़बड़ है। मतलब 1, 2, 3 समझ जाना चाहिए, 3 बार इशारा हुआ है। तो मैंने बोला अब भी कभी निकलो, हम चलते हैं गेस्ट हाउस पर और जाते रेलवे स्टेशन। तो फिर हम, वो इतना जिद्दी पर्सन था,
क्योंकि उसने बहुत सारी कथा बताई। तो समुद्र किनारे जैसे हमारा अटवा है, बोले प्रभु जी आपने बोला था सारी नदियों का आवाज समुद्र में होता है, इधर भी एक डुबकी लगाएंगे। मतलब यार चलो, फिर वहां लगाई तो चौथा आवाज, मतलब अभी नहीं रुकना है। जैसे होटल में गए और चिपचिप पानी से 7:15 बजे स्नान किया, मैंने तो अब भी के जाओ रिक्शा लेकर आओ। फिर वो गया बाहर, तुरंत रिक्शा लेकर आया, हमने हमारा लगेज वगैरह डाला, 7:15 बजे रिक्शा, 7:30 बजे रिक्शा निकली, 7:45 बजे पूरी स्टेशन पर पहुंची। और जो आता है ना क्या ना डिजिटल, तो वहां पहुंचने के बाद वहां लिखा है हमारी ट्रेन का टाइम 8 बजे, टिकट भी लिखा था 10 बजे, 15 मिनट बिफोर हम पहुंचते। तो मैंने बोला देखो भगवान हमसे बता रहे कि टिकट में गड़बड़ है, मतलब टिकट का टाइम टेबल गलत है। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है। फिर काउंटर पे गए, उसने पूछा टिकट 26 तारीख का टिकट लिया, बोले 1 जुलाई से सारे ट्रेन के टाइम टेबल बदल चुके हैं। तो फिर हमें जगन्नाथ पर इतना भरोसा और विश्वास आया कि मतलब भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। अभी हम उसके भरोसे 10 बजे ट्रेन जाती, ट्रेन भी जाती, टिकट भी जाता और होटल भी छोड़ देती, फिर पूरी रात वही स्टेशन पे बितानी पड़ती। तो वो पहला एक्सपीरियंस है कि भक्तों की रक्षा भगवान हमेशा संकट में करते हैं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ पर भगवान हमेशा, इसलिए हमें भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागत और डिपेंड होकर रहना चाहिए, है ना। अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपना बल कुछ काम नहीं आता है, कोरोना में दिखा दिया है ना, सारी आपके इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, टेक्नोलॉजी, मेडिकल सब फेल। अभी तक कोरोना का वैक्सीन नहीं मिला है ना, पर फिक्स कोई बता सके इसको लेने के बाद कोरोना नहीं हो, नहीं मिला है। तो मतलब भक्ति में आने के बाद भगवान हमको इन घटनाओं से ये सिखाते हैं, डिपेंड ऑन मी, सरेंडर अनटू मी, हमें शरणागत होना चाहिए। इसी प्रकार सारे ब्रजवासी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हमेशा कृष्ण पर शरणागत है, हर तरह से शरणागत है, हर तरीके से शरणागत है। तो भक्ति में आने के बाद हमें यही एक सिद्धांत, इसलिए भगवान की गीता पर वो श्लोक महत्वपूर्ण है, सारे गीता का सार, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज अहम ताम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा सुच। तो इस प्रकार भगवान यह ग्वाल बालों के द्वारा हमें यही कि हमेशा भगवान के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। तो शरणागत वत्सल भी एक उनका गुण है, और जो शरण में आए उनकी रक्षा करते, वो भी कैसा भी भक्त हो, फिर भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते। दूसरा इंसिडेंट है, मैराथन खत्म करके जब हम कल्याण से ठाणे आ रहे, मोझू आ रहे थे, तब हमारी रिक्शा थी, हमारे साथ अजय गोविंद प्रभु जो अभी टिकट काउंटर पर बैठते हैं वो थे, वो रिक्शा चलाते, हम पीछे थे। उसने सामने, उनके पास लाइसेंस नहीं था, सामने पुलिस की गाड़ी चल रही थी, उसके बोले वो रुकी, इसलिए उसने सड़क ब्रेक मार दिया, उतरती थी तो रिक्शा हमारी गलती हो गई और 20-30 फुट घसीटते हुए गई, और जिस साइड में मैं बैठा था उसी साइड में पलटी हुई, और 30 फुट कम से कम वो पूरी घिसट गई और रिक्शा का पूरा एक साइड टूट गया। और जब रिक्शा पलटी हुई तो बहुत सारे लोग जमा हो गए, कोई मतलब उनको लगा कि कोई ना कोई गया। और हम जब उठे तो रिक्शा के अंदर से मैंने गोविंदा पुकार के बाहर कूदा और देखा तो ना कुर्ता फटा है, ना कोई एक खरोच है, ना उसको थोड़ी सी खरोच है, मुझे कुछ भी नहीं लगा। मैं बोला ना इतना थोड़ा सा हम गिर जाते तो कुछ ना कुछ लगता है, और ये 20-30 फुट रिक्शा घसीट के चली गई लेकिन कुर्ते का एक धागा भी नहीं निकला, फटा भी नहीं, चोट तो दूर की बात। तब और विश्वास 2006 की बात है कि मतलब भगवान की सेवा में लगे रहो, भगवान सबसे बड़ी दुर्घटनाओं से भी आपको बचाएंगे। तो वैसे ही रिक्शा हमने बांधी धागे से, एक रस्सी से, और फिर स्टार्ट किए, फिर वही रिक्शा लेके जीव में आ गए। तो इस प्रकार मैंने वो भी अनुभव किया कि आप भगवान के कार्य, क्योंकि मैराथन मतलब भगवान का सबसे बड़ा कार्य प्रचार कार्य है ना, उनकी गीता का दूसरों को देना है ना। तो प्रचार कार्य में लगे हुए भक्तों को तो भगवान और अधिक रक्षा करते। आज राधा गोविंद महाराज का डेली का स्टेटमेंट आता है, उसमें लिखा है भले आप बद्ध हो, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, भगवान लिख रहे हैं कोई भी बंधन क्यों ना हो पर हमें प्रचार अवश्य करना है। इसमें तो स्वयं भगवान श्री दामोदर प्रमाण है, वे तो बद्ध थे किंतु उस बद्ध अवस्था में भी 2 वृक्षों का उद्धार उन्होंने किया, इसके बाद नंद महाराज ने उनका बंधन खोल दिया। इस पर पूर्व आचार्य कहते कि इसी तरह कोई प्रारब्ध में बद्ध व्यक्ति पर प्रचार करे करके दूसरों का बंधन खोलता है, चाहे वो स्वयं बद्ध क्यों ना हो, तो उसका बंधन भी भगवान की कृपा से कोई ना कोई खोल देता है। तो प्रचार कार्य ही सबसे बड़ा प्रिय कार्य है, और प्रचार कार्य में बहुत सारे भगवान के रियलाइजेशन और भगवान की कृपा, भगवान की रक्षा का अनुभव बहुत आता है। ऐसे कई सारे आए इंसिडेंट्स मेरे जीवन, मैंने दो ही शेयर किया आपके साथ। तो भगवान हमेशा भक्त वत्सल है और भक्त रक्षक है, इसलिए ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दामोदर मास में, कार्तिक महीने में, और भगवान की लीला का ही चैप्टर चल रहा है। हमारा भाग्य है कि वही चैप्टर चल रहा है। तो ऐसी कथाओं का श्रवण करने का और हमें कथा कहने का जो सुअवसर मैनेजमेंट ने दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? 5 मिनट बाकी है, उत्तर तो जितनी मेरी क्षमता है देने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। दो प्रश्न, दो हाथ खड़े। यस, पहले सीनियर को चांस देते हैं। हाँ बोलिए। ये टॉपिक को छोड़ के प्रश्न पूछ रहे हैं।
हरे कृष्णा, धन्यवाद, आपने बढ़िया क्लास दिया है और आपका बहुत कुछ साक्षात्कार है जीवन में, भगवान के मतलब भक्ति के सेवा में, अच्छी बात है। अभी एक थोड़ा बताइए कि थाना मंदिर के बारे में विस्तार प्रोग्राम क्या है, कैसे क्या होगा अपने सब भक्तों के नो लाभ के लिए।
हरे कृष्णा। तो थाना मंदिर आप देखे, आप आए, रामरूप प्रभु भी आए, रामरूप प्रभु तो कई बार आए, उन्होंने वहां कथा भी की है ना, 3-4 बार आ चुके प्रभु जी, भागवत कथा जन्माष्टमी की। तो भगवान की कृपा से सब कुछ कार्य होता है, मैं निमित्त मात्र हूँ, है ना। भगवान गीता में बोलते हैं निमित्त मात्रेण सव्य साचिना। तो भगवान किसी किसी को चुनते हैं विशेषकर कार्य के लिए, जैसे अर्जुन को महाभारत के लिए चुना, प्रभुपाद को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए चुना, है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज के पास कई दिग्गज सन्यासी थे लेकिन कोई प्रचार नहीं कर पा रहा, विदेशों में सक्सेस नहीं हुआ। तो भगवान की योजनाओं को, भगवान की कृपा कोई नहीं जान सकता। तो थाना में भी मंदिर वो भगवान की योजना थी, कैंपस पिचिंग से ही मुझे प्रेरणा मिली थी कि प्रचार करना है तो कहाँ करे। वेस्टर्न लाइन में तो 3-3 मंदिर है, सेंट्रल लाइन पे एक भी नहीं है। तो मैंने सोचा फिर थाना सिटी अच्छा है, तो वहां हमने 2008 में ही ये कल्पना थी कि थाना में प्रचार करेंगे। और एक घर से शुरू किया 2008 से, किरण राजहंस करके एक एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनके घर से, और फिर धीरे 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 लगा रहा। एक बार मैं नर्वस भी हो गया, मतलब क्या सक्सेस नहीं मिल रहा इतना, छोड़ दो। फिर मुझे हेमगिरी प्रभु ने उत्साह दिया, बोले किसी भी कार्य का यश निरंतरता लगी रहने से मिलता है। तो फिर 2009 में बंद कर दिया, फिर 2010 से पुनः चालू किया और फिर कांग्रीगेशन बढ़ते गया। अभी तक करीबन 700 कांग्रीगेशन जुड़े हैं, उसमें से 150 रेगुलर है। अभी तक 36 भक्तों को वह दीक्षा दे चुके हैं। और मंदिर का कार्य लॉकडाउन के कारण थोड़ा ठंडा हुआ, तो अभी 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और वो भी एक बड़ी कृपा है, हमने जब वृंदावन से वापस आए तो भगवान को डिजायर किया कि हम भी कुछ अलग हमें स्थान दीजिए। भाड़े से हम घूम रहे हैं, 10 साल से हम इस भाड़े से ये हॉल वो हॉल वो हॉल करते करते म्युनिसिपैलिटी, फिर वही राजन जी के सहयोग से बिल्डर है, उनकी कृपा से एक बड़ा प्रोमिनेंट जगह पर, बहुत थाने की एकदम स्पेशियस जगह है और बहुत कॉस्टली जगह है, तो वहां पर भी भगवान ने एक बिल्डिंग के अंदर ही नीचे का पूरा फ्लोर, 27 माले की बिल्डिंग है, उसका पहला फ्लोर 5,000 स्क्वायर फुट है, वो दे दिया। फिर हमने उसी को इंटीरियर मंदिर बना रहे, जैसे चौपाटी है गोपीनाथ, यहाँ अंदर ही पूरा एक हॉल में। तो विश्वकर्मा प्रभु हमारे यहाँ जो मंदिर के पुजारी भी है, आप उनको फेस्टिवल में देते, वही वो सब प्लानिंग किया है और वही आर्किटेक्चर है, वही देख रहे हैं। और विशेष बात ये रही कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ ज़्यादा कोई ज़्यादा कलेक्शन करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो मैंने सोचा कलेक्शन कैसे होगा, उन्होंने बजट बताया कि 125 करोड़ रुपया खर्चा आएगा, तो मेरे हाथ में 27 थे जो मैंने 15 साल की प्रीचिंग में दान धर प्रचार कर करके यात्रा निकाल के जमा थे, उसी के आधार पर हमने शुरू किया। तो लेकिन मन में ख्याल आया कि सोशल मीडिया का यूज़ किया जाए, तो हमने व्हाट्सअप का यूज़ किया, खाली एक मैसेज बनाया, उसमें अकाउंट नंबर डाल दिया और वही फॉरवर्ड करते जा रहा हूँ। अभी तक मैं एक के घर भी और एक के भी दुकान पर या किसी कंपनी में नहीं गया मांगने। 490 लोगों ने आज तक डोनेशन दिया है, कम से कम 70 लाख रुपये डोनेशन खाली व्हाट्सअप के जरिए आया। और प्रभु जी ने भी हमें बहुत जन्माष्टमी हेल्प किया, करीबन 4 लाख 2 लाख 4 लाख ना
हाँ 4 लाख रुपीज प्रभु जी ने भी जन्माष्टमी में पहला ऐसा कथाकार देखा, कथाकार कथा करते तो पैसा मांगते प्रभु जी पहले ऐसे कथाकार है जो कथा करके खुद पैसा दिए तो किसी ना किसी माध्यम से भगवान हेल्प कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट अभी भी बैंक खाली हो गया है, लेकिन मैं भगवान से आज वही प्रेयर किया मंगल आरती में को धन भेजिए। तो रक्षक तो वही है, दाता तो वही है, हम तो भिखारी है, तो उनके सामने मांगने का बराबर भेजते हैं। तो व्हाट्सएप के जरिए पूरा लिस्ट है मेरा, जो नाम देता है उसका नाम, उसके आगे उसकी रकम, तो फॉरवर्ड करता हूँ। तो करीबन 25-15 ग्रुप है व्हाट्सएप, उन सभी ग्रुप में भेजते जाता हूँ। और लोग देख देख के पढ़ पढ़ देखते हैं तो उनको भी उत्साह होता है कि मुझे भी देना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने अभी तक देते हैं, 490 संख्या हो गई है ना व्हाट्सएप से दान देने वाले। ये पहला ऐसा कोई कलेक्शन करने वाला, भजहरी प्रभु को बताया मैं, हमारे प्रेसिडेंट को, तो तुम्हारा कलेक्शन कैसा चल रहा है, बनता ऐसा चल रहा है, तो वो भी आश्चर्य हो गए, बनते वहां तो बहुत बड़ा कलेक्टर है, बनते नहीं जो भी है भगवान की कृपा से हो रहा है, वैष्णव के आशीर्वाद से। तो इस प्रकार ये मंदिर निर्माण हो रहा है ना, किसी को चीटिंग करके बहुत बड़ी बड़ी बातें बताकर ऐसा नहीं, खाली मैसेज भेज दिया, मैं किसी को फोन भी नहीं करता। और आश्चर्य की बात है एक भी व्यक्ति को मैंने रिटर्न कुछ नहीं दिया है, 1 रुपए का भी गिफ्ट अभी तक नहीं दिया है। तो लोगों की श्रद्धा प्रभुपाद इस्कॉन पर इतनी है कि अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमें कुछ उसके बारे में मिलना चाहिए। तो ये शुद्ध भक्ति का प्रचार जो प्रभुपाद जी ने किया है, ये शुद्धता में पावर होती है, प्यूरिटी इज द फोर्स, कि हमें खाली बस लगे रहना है ना? हमारे भक्ति शास्त्री के एक टीचर थे प्रभुपाद डिसिपल कृतु प्रभु, उन्होंने एक मूल मंत्र हमको सिखाया, मैं उस मंत्र को हमेशा याद करता हूं। वो बोले कुछ भी हो जाए आपके जीवन में इस्कॉन में पड़े रहो, उनका एक ही वाक्य, इस्कॉन को छोड़ के कभी जाओ मत, चाहे आपके साथ मारपीट हो, आपको बदनाम किया जाए, आपको कुछ भी किया जाए, लेकिन इस्कॉन को छोड़ो मत, है ना, पड़े रहो। तो उनका एक स्लोगन है इस्कॉन में पड़े रहो, तो मैं पड़ा हूं, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। तो भगवान की असीम कृपा से, उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं तो खुद देख रहा हूं कि इतना बड़ा मंदिर, मैं बोला मैं बाहर रहता तो एक घर नहीं बना पाता, है ना, इतनी एबिलिटी मटेरियलिस्टिक मेरे पास नहीं होगी, मैं एक घर नहीं बनाता। और बॉम्बे जैसे सिटी में, इतनी कॉस्टली सिटी में, जहाँ 27 माले पर लोग पैसा जमा जमा करके 1.5-1.5 करोड़ का, 2-2 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं, खाली 2 BHK 3 BHK। और भगवान का मैं प्रचार करने के बाद भगवान ने मुझे उसमें 4 बड़े बड़े 3 BHK बैठ सकते, इतना बड़ा लंबा फ्लैट दे दिया। तो मैं आश्चर्य होता हूँ कि भगवान का कार्य करने से और भगवान का प्रचार करने से किसी भी चीज की कमी उस व्यक्ति को नहीं होती है। 18 साल में ना मैं नौकरी किया हूं, ना रुपया लाया हूं, ना किसी से मांगा हूं, बस प्रचार किया हूं जितनी क्षमता है। तो मतलब ये राधा गोविंद महाराज बोल रहे कि प्रचार ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बाकी सब आचार है, खाते है ना, प्रसाद खाते ही सब खाते, कुर्सी पे बैठ के पैसा भी खाते सब खाते, लेकिन प्रचार ही एक ऐसी चीज है जिसमें भगवान आपको हर तरीके से मदद करता है, क्योंकि भगवान का सबसे प्रिय कार्य है प्रचार। आचार्यों का सबसे प्रिय कार्य है प्रचार, प्रभुपाद का भी प्रिय कार्य है प्रचार, और गुरु का भी सबसे प्रिय कार्य प्रचार। प्रचार से खुद का भी भला, जगत का भी भला, सबका भला, इसीलिए प्रचार करना चाहिए। तो इसी प्रकार ये थाना मंदिर बन रहा है, 2-3 महीने में बन के कंप्लीट हो जाएगा। और आप में से अभी बैठे इतने से कोई देना चाहता है तो वेलकम है, व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे हम, और व्हाट्सएप से आप मुझे भेज दीजिए। हरे कृष्ण। तो आपका प्रश्न सब रूप।
थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण।
माइक माइक
हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया। मैं सोच ही रहा था शुरू में आप नीलाचल निवास आए, जगन्नाथ जी को प्रणाम मंत्र बोल रहे थे, मैं सोच रहा था नॉर्मली तो नहीं होता है, कुछ तो प्रभु जी का विशेष भाव है जगन्नाथ जी के प्रति, या मैं सोच रहा था शायद हमारे स्कूल में है तो हमारे भगवान वहां पर एक है तो इसलिए शायद बोल रहे होंगे, पर क्लास में पता लगा कि आपने मंत्र क्यों बोल रहे हैं, जगन्नाथ जी से आपका पुराना स्पेशल अफेक्शन है।
आपको इमेजिन होगा, मैं जगन्नाथ, जब टीवी पे जगन्नाथ रथ यात्रा आती है दूरदर्शन पर, उस समय प्रॉपर गाली देता था मैं दूरदर्शन वालों को, और वो क्या लगा के रखा पूरा दिन भर टैन 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 टैन, और मैं आज देखता हूँ कि वही जगन्नाथ मुझे लाए और इतने सारे चमत्कार दिए,
एक नहीं कई घटनाएं जगन्नाथ जी के साथ, इसलिए अब मेरे गले में देखेंगे जगन्नाथ ही है। और पहला मंदिर मैंने वही सोचा था जब उन्हें चमत्कार के, मैं तो पहला मंदिर बनाऊंगा यदि तो आपका ही बनाऊंगा। और ये नहीं है, मंदिर बनने से पहले भगवान 2018 से आके बैठे हुए हैं और जगन्नाथपुरी से ही आए हैं। जगन्नाथपुरी से दारू ब्रह्म आया और इधर ही एक ब्रह्मचारी और उनके भाई ने बनाकर मिलाया, मिलकर बनाया है ना जगन्नाथ जी को इधर जीव भांडुप में। और 2018 से जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं 27वें माले पर और वही सब कुछ करवा रहे हैं। मैं खाली निमित्त मात्र हूँ। तो मतलब कई जगह पर मंदिर बनने के बाद भगवान आते हैं। यहाँ मंदिर मिला भी नहीं था, मिला था जस्ट प्रोजेक्ट, उससे पहले ही जगन्नाथ जी आकर बैठे हुए हैं। तो मतलब सब कुछ जगन्नाथ जी कर रहे हैं और मेरे से करवा रहे हैं। तो मेरा भाग्य है, अवभाग्य कि भगवान मेरे से, क्योंकि मंदिर बना कोई साधारण काम नहीं होता है, बहुत है ना, बहुत विशेष कार्य होता है। तो भगवान मेरे को निमित्त बनाकर करवा रहे हैं। तो ये जगन्नाथ जी कर रहे हैं, जगन्नाथ जी बैठे हुए 2018 से, तो वेटिंग कर रहे कब वहाँ बैठे। और वहाँ कौन नहीं आया उस मंदिर में, गोपाल कृष्ण महाराज, लोकनाथ महाराज, हाँ, भीमा प्रभु, देवकीनंदन प्रभु, बजरी प्रभु, वैष्णव, हर दिग्गज उस मंदिर में बनने से पहले आके अपने चरण रख के गए। मतलब गुरु, कृष्ण, वैष्णव, इन सबके आशीर्वाद से वो मंदिर बन रहा है। मेरा कोई योग्यता नहीं है, श्रेय नहीं है, ये बड़े बड़े दिग्गज बनने से पहले। गोपाल कृष्ण महाराज तो देखकर बोले, अरे ज्योतिर्मन इतना बढ़िया जगह कौन दिया तुमको? मैं तो मुझे नहीं दिया, राजेश लाया। फिर राजेश बोलते कौन है? मैंने बिल्डर ने लाया। तो गोपाल कृष्ण महाराज को वो जगह बहुत अच्छा लगा, स्पेशली बड़े मेन रोड पर है। तो सारे वैष्णव का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, तो जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है, ये सब हो रहा है। अब बहुत सारे और चमत्कार, लेकिन समय नहीं है, भगवान ने किस प्रकार रक्षा किया। भगवान जगन्नाथ जी हर इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि कलयुग में यदि भगवान के रूप में साक्षात धरती पे कौन उपस्थित है तो जगन्नाथ है ना, कलयुग के भगवान जगन्नाथ। ठीक है, हनुमान प्रभु जी का एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सब समय भी हो रहा है।
हरे कृष्ण। अब बहुत लोग प्रश्न पूछे है, मैं थोड़ा कमेंट देता हूं। आनुकूल्य से शरणागत के 6 लक्षण है, आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्ष से विश्वास हो, गोपतृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षट विधाम शरणागति। आनुकूल्य से संकल्प, जो प्रभु के सेवा के लिए अनुकूल हो उसे स्वीकार करना। प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसे त्याग देना। गोपतृत्व रक्ष स्थिति विश्वास हो कि प्रभु निश्चित रूप से हमारे रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना। गोपतृत्व वर्णम तथा प्रभु ही हमारे पालनहार है, जो भी आवश्यकता होगी जब भी होगी प्रभु ही इसका व्यवस्था करेंगे। आत्मनिक्षेप और प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण करना कि प्रभु हम आपके शरणांगत है। कार्पण्य, और कोई कष्ट हो जिसका निवारण आमतौर पर नहीं हो पा रहा है तो प्रभु को निवेदन करना कि प्रभु यह हमारा कष्ट आप निवारण करिए। तो यह शरणागति के 6 लक्षण हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, धन्यवाद। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा राज बिहारी की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, निताय गौर प्रेमानंदे।